तीसरा, बर्मा के प्राचीन भारतीय राज्य। बर्मा में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना किस प्रकार हुई, इस पर इसी अध्याय में पहले प्रकाश डाला जा चुका है। वर्तमान समय में जिस जाति का इस देश में प्रधान रूप से निवास है वह ब्रह्म या ब्रह्म है। उसी से इस देश का नाम ब्रह्मा पड़ा, जो बिगड़कर अंग्रेजी में बर्मा हो गया। पर ब्रह्म लोगों से पहले बर्मा में मू और पयू जातियों का निवास था, जिन्होंने भारतीय उपनिवेशकों के संपर्क में आकर भारत के धर्म, भाषा तथा संस्कृति को अपना लिया था और सांस्कृतिक दृष्टि से जो पूर्णतया भारतीय बन गई थी, मो जाति तलैंग भी कहती है। मो जाति द्वारा आबाद प्रदेशों में जिन भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, वे संभवतः तेलंगाना से वहां गए थे और तेलंग कहते थे। भारत से गए तेलंगों ने मो लोगों के बीच में बसकर उन्हें अपनी संस्कृति के रंग में रंग दिया था और उनके साथ एक रूपता स्थापित कर ली थी। इसीलिए मो लोग भी तेलंग या तलैंग कहने लगे थे। पर मो जाति द्वारा आबाद दक्षिणी बर्मा के प्रदेशों में भारत से जाकर केवल तेलंग लोगों ने ही अपने उपनिवेश नहीं बसाए थे, अपितु बंगाल से भी उपनिवेशक वहां गए थे। 1476 ईस्वी में कल्याणी शिलालेखों के अनुसार अशोक के समय में बौद्ध प्रचारक जब बर्मा गए थे तो वहां की राजधानी गोलमतिका नगरी थी और समुद्र तट पर स्थित थी। इसका गोलमतिका नगरी नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि मिट्टी से बने हुए इसके मकान गोल देश के मकानों के सदृश थे। सभी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि गौड़ बंगाल देश को ही इन अभिलेखों में गोल कहा गया है। दक्षिणी बर्मा के एक प्रदेश का नाम उत्कल भी था। संभवतः तेलंगाना और बंगाल के समान उत्कल उड़ीसा से भी कुछ उपनिवेशक बर्मा गए थे और मो लोगों के क्षेत्र में उन्होंने अपनी बस्तियां बसाई थी। प्राचीन ग्रंथों तथा अभिलेखों में दक्षिणी बर्मा की अन्य भी अनेक बस्तियां के नाम आए हैं, जिनमें रामावती, असितान जननगर रंगून के समीप, कुसीमनगर बसीन, रामपुर मौलमीन और मुतीम मंडल मर्तवान मुख्य है। ये सब भारतीय बस्तियां भी मो लोगों के क्षेत्र में ही थीं और सभ्यता तथा संस्कृति में उन्नत भारतीयों के संपर्क से भी मो लोग भी भारतीय रंग में रंग गए थे। भारतीय रंग में रंगे हुए मो लोगों के विविध प्रदेशों की सामूहिक संज्ञा रामंच देश थी। इस रामंच देश के विविध मो राज्यों के जो वृतांत पाली ग्रंथों में मिलते हैं उन्हें यहाँ लिख सकना संभव नहीं है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इन राज्यों के राजाओं के नाम भारतीय थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। 7वीं सदी में मो लोगों का प्रमुख राज्य द्वारवती था। तोलपति नाम से वेन सांग ने भी इसी का उल्लेख किया है। द्वारवती की राजधानी लवपुरी लोपभूरी थी। उसके खंडहरों में मो लोगों ने अनेक अभिलेख भी मिले हैं जो मो लोगों के हैं, जो एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। द्वारवती के अतिरिक्त मो जाति के अन्य भी अनेक राज्य थे जिनके राजाओं द्वारा मलेच्छों को पराजित किए जाने के वृतांत बर्मा के पाली साहित्य में विद्यमान हैं। श्री क्षेत्र। दक्षिणी बर्मा के मो जाति द्वारा आबाद प्रदेश के उत्तर में पयू जाति का निवास था। पयू लोगों के प्रदेश में भी भारतीयों ने अपने अनेक उपनिवेश स्थापित किए थे, जिनके संपर्क में आकर पयू जाति भी भारतीय रंग में रंग गई थी। पयू लोगों के भारतीय राज्य की राजधानी श्री क्षेत्र थी, जिसके खंडहर महावजा नामक स्थान पर विद्यमान है। महावजा से पयू लोगों के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पर उनके आधार पर उनका क्रमबद्ध इतिहास जान सकना संभव नहीं है। पर इन अभिलेखों से यह भली भांति प्रमाणित हो जाता है कि पयू लोगों के इस नगरी को भारतीय संस्कृति ने पूर्ण रूप से प्रभावित किया हुआ था। महावजा श्री क्षेत्र का एक अभिलेख बुद्ध की एक मूर्ति के आधार स्थान पर उत्कीर्ण है। यह शुद्ध संस्कृत में है और इसका समय 7वीं सदी के लगभग है। अभिलेख से सूचित होता है कि राजा जय इंद्र वर्मा ने अपने गुरु के कहने पर उस बुद्ध मूर्ति को इस प्रयोजन से प्रतिष्ठापित कराया था ताकि राजा का अपने छोटे भाई हरि विक्रम से सौमनस्य बना रहे। महावजा में प्राप्त कुछ लेख पयु भाषा में भी हैं, जिनमें वहां के 3 राजाओं के नाम दिए गए हैं, हरि विक्रम, सिंह विक्रम और सूर्य विक्रम। एक स्तूप पर उत्कीर्ण लेख भी महावजा से मिला है, जिस पर श्री प्रभु वर्मा और श्री प्रभु देवी के नाम दिए गए हैं। संभवतः ये भी वहाँ के राजा और रानी के नाम हैं और इन्हीं द्वारा उस स्तूप का निर्माण करवाया गया था। वेनसांग ने श्री क्षेत्र का उल्लेख शी ली च त लो नाम से किया है और अनेक चीनी ग्रंथों में पियाओ नाम की एक जाति का उल्लेख मिलता है, जिसका निवास बर्मा में था। पयु जाति के लिए ही चीनी ग्रंथों में पियाओ शब्द का प्रयोग किया है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। पयु लोगों के राज्य का चीन के साथ संबंध था और 802 ईस्वी में वहां राजा ने अपने पुत्र सुनंदन के नेतृत्व में एक दूत मंडल चीन के सम्राट की सेवा में भेजा था। इसके बाद 807 ईस्वी में भी एक दूत मंडल पयु राज्य श्री क्षेत्र से चीन भेजा गया। चीनी लोगों को इन्हीं दूत मंडलों द्वारा पयु राज्य के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। चीनी विवरणों के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर इस राज्य की लंबाई 500 मील थी और उत्तर से दक्षिण की ओर 700 मील। 18 राज्य इसकी अधीनता स्वीकार करते थे और 8 या 9 राज व दुर्ग इसमें विद्यमान थे। चीन के तांग वंश के इतिहास में इस राज्य के संबंध में लिखा है कि इसका राजा महाराजा कहलाता था और मुख्यमंत्री के लिए महासेन प्रयुक्त किया जाता है। राजधानी एक दुर्ग के रूप में है, जिसकी प्राचीर की परिधि 27 मील है। प्राचीर के चारों ओर परिखा है, जिसके किनारे ईंटें लगाई गई हैं। दुर्ग में निवास करने वाले भारतीय परिवारों की संख्या हजारों में है। वहाँ 100 से ऊपर बौद्ध विहार है, जिनके कमरे सोने चांदी से विभूषित हैं। लोग प्राणियों की हिंसा को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जब बालक और बालिकाएं 7 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो वे सिर मुड़ाकर विहारों में रहने लगते हैं। यदि वे भिक्षु व्रत ग्रहण न कर ले तो 20 साल की आयु हो जाने पर वे सांसारिक जीवन बिताने के लिए अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। श्री क्षेत्र का यह पयु राज्य 9वीं सदी के अंत तक अच्छी समृद्ध दशा में कायम रहा, पर बाद में इसका ह्रास शुरू हो गया। दक्षिण की ओर से इस पर मऊ लोगों के आक्रमण होने लगे और उत्तर की ओर से म्रम लोगों के। संभवतः 10वीं सदी में ही दक्षिणी बर्मा के मो लोगों ने श्री क्षेत्र पर अधिकार कर पयु लोगों की शक्ति का अंत कर दिया था। अराकान के वैशाली और ताम्रपट्टन राज्य बर्मा का जो पूर्वी प्रदेश बंगाल की खाड़ी में लगा हुआ है वह अराकान कहता है। लंबाई में यह 350 मील है। अराकान की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार वाराणसी के एक राजकुमार ने वहां आकर अपना राज स्थापित किया था, जिसकी राजधानी रामावती नामक नगरी थी। यह अराकान पहला राजवंश था। वहां दूसरे राजवंश की स्थापना एक ब्राह्मण द्वारा की गई, जिसने प्रथम राजवंश की राजकुमारी के साथ विवाह कर रामावती के राज सिंहासन को प्राप्त किया था। इसके बाद 2 अन्य राजवंशों ने अराकान में शासन किया और उन्होंने धान्यवती नामक नगरी को अपनी राजधानी बनाया। 149 ईस्वी में राजा सूर्य वहां के राज सिंहासन पर विराजमान था। वह इस राजा ने महामुनि बुद्ध की एक मूर्ति प्रतिष्ठापित कराई थी, जिसे चीरकाल तक अराकान की अधिष्ठात्री देवता माना जाता था। अराकान के इन प्राचीनतम राजवंशों का प्रामाणिक इतिहास ज्ञात नहीं है, पर बाद के इतिहास काल में जिन राजाओं ने अराकान में राज किया उनका वृतांत अधिक प्रामाणिक रूप में जाना जा सका है। इनका वृतांत न केवल पुराने ग्रंथों से ही ज्ञात होता है, अपितु इनके कुछ अभिलेख तथा सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। इन राजाओं के नामों का अंत चंद्र से होता है और इनकी राजधानी वेसली या वैशाली थी, जिसके भग्नावशेष अब भी विद्यमान हैं। अराकान के मोहोंग नामक स्थान पर मंदिर के एक स्तंभ पर अभिलेख उत्कीर्ण है, जिसे में श्री धर्म राजानुज वंश के 19 राजाओं के नाम उनके शासन वर्षों के साथ दिए गए हैं। इन 19 राजाओं में अंतिम आनंद चंद्र है, जिसके शासन काल में यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। अभिलेख में आनंद चंद्र के विषय में यह कहा गया है कि उसने बहुत से बौद्ध विहारों तथा ताम्र की सुंदर मूर्तियों का निर्माण कराया था और आर्य संघ के भिक्षुओं के लिए बहुत से भवन भी बनवाए थे। वह प्रतिदिन भिक्षुओं को वस्त्र का दान दिया करता था और 50 ब्राह्मणों को भी उसने भूमि दान में दी थी। मोहोंग के इस स्तंभलेख में जिन राजाओं के नाम दिए हैं उनमें से प्रीति चंद्र, नीति चंद्र और धर्म विजय के सिक्के भी मिले हैं। अतः यह अनुमान करना असंगत नहीं है कि ये सिक्के श्री धर्म राजानुजवंश के इन राजाओं के ही हैं। पर अराकान से बहुत से पुराने सिक्के ऐसे राजाओं के भी प्राप्त हुए हैं जिनके नाम मोहोंग के स्तंभलेख में नहीं हैं। ये सिक्के वीरचंद्र, धर्मचंद्र आदि के हैं। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि अराकान में दो राजवंश पृथक पृथक प्रदेशों में राज कर रहे थे। उनमें से एक की राजधानी वैशाली थी और दूसरे की ताम्रपट्टन। मोहोंग के अभिलेख में श्री धर्म राजानुज वंश को ताम्रपट्टन शासक कहा गया है। संभवतः वैशाली और ताम्रपट्टन के दोनों राजवंशों का परस्पर घनिष्ठ संबंध था, या वे एक ही राजवंश की दो शाखाएं थीं। इनके शासनकाल में अराकान भारतीय संस्कृति का केंद्र था, वहां संस्कृति का प्रचार था और गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि लिखने के लिए प्रयुक्त की जाती थी। वैशाली के खंडहरों में कांस्य का एक घंटा मिला है जो 7वीं सदी का है। इस पर संस्कृत का एक अभिलेख उत्कीर्ण है। वहीं संस्कृत का एक अन्य अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जो गुप्त लिपि में लिखित है और संभवतः 8वीं सदी का है। मोहोंग के स्तंभलेख को उत्कीर्ण कराने वाला राजा आनंद चंद्र बौद्ध धर्म का अनुयायी था, पर ब्राह्मणों को भी उसने भूमि दान में दी थी। अराकान से चंद्र नाम वाले राजाओं के जो सिक्के मिले हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन पर शैव और वैष्णव धर्मों के चिन्ह अंकित हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि वहां बौद्ध धर्म के अतिरिक्त पौराणिक हिंदू धर्म का भी प्रचार था, या वहां के बौद्ध राजा शैव और वैष्णव धर्मों के प्रति भी श्रद्धा रखते थे। अराकान के इन भारतीय राज्यों की पृथक सत्ता व स्वतंत्रता का अंत तब हुआ जबकि उत्तरी बर्मा के अरिमंदनपुर के प्रतापी राजा अनिरुद्ध 11वीं सदी ने अपने राज्य का विस्तार करते हुए उत्तरी अराकान की विजय कर ली। अरिमर्दनपुर ब्रह्म या ब्रह्म जाति का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसका निवास उत्तरी बर्मा में था और यह उन प्रदेशों में बसी हुई थी जो पयु राज्य की शक्ति क्षीण होने लग गई। ब्रह्म लोगों को अपने उत्कर्ष का अवसर हाथ लग गया और उन्होंने दक्षिण की ओर उन प्रदेशों को अधिगत करना प्रारंभ कर दिया जो पहले पयु राज्य के अंतर्गत थे। ब्रह्म लोगों के इस अभियान का प्रारंभ 9वीं सदी में ही हो गया था। बर्मा के प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार जब मो लोगों ने पयु राज्य की पुरानी राजधानी श्री क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया तो पयु लोगों ने उत्तर दिशा में आगे बढ़कर इरावदी नदी के तट पर एक नई नगरी की स्थापना की थी जिसका नाम पगान था। पर पयु लोग वहां भी शांति के साथ नहीं रह सके। ब्रह्म जाति के इस नगरी को जीत लिया गया और इसे केंद्र बनाकर अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया। पगान का प्राचीन नाम अरिमर्दनपुर था और जिस राज्य की राजधानी थी उसे ताम्र द्वीप कहते थे। अरिमर्दनपुर पर अधिकार स्थापित कर मर्म जाति के जिन राजाओं ने वहां शासन किया उनके नाम तथा उनसे संबंध अनेक कथाएं प्राचीन बर्मी इतिवृत्त में विद्यमान है, पर इतिहास की दृष्टि से उनका विशेष महत्व नहीं है। जिस समय मर्म जाति ने अरिमर्दनपुर में अपना राज्य स्थापित किया, सभ्यता की दृष्टि से वह बहुत पिछड़ी हुई थी। न उसका कोई साहित्य था और न लिपि। पयु और मो लोग उसकी तुलना में बहुत अधिक सभ्य थे। अतः जब मर्म लोग इन सभ्य जातियों के संपर्क में आए तो यह स्वाभाविक था कि वे पयु तथा मो संस्कृति को अपना लें, क्योंकि इन जातियों की संस्कृति भारतीय थी। अतः मर्म लोग उसके संपर्क द्वारा भारतीय संस्कृति के रंग में रंगने लग गए। अरिमर्दनपुर के जिस मर्म या बर्मी राजा के विषय में हमें प्रमाणिक रूप से परिचय प्राप्त है उसका नाम अनिरुद्ध था। वह 1044 ईस्वी में अरिमर्दनपुर पगान के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का साधन केवल अनुश्रुति व साहित्य ही नहीं है, अपितु उनके अनेक अभिलेख आदि भी उपलब्ध हैं। अनिरुद्ध एक महान विजेता था और उसने पड़ोस के बहुत से राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति का बहुत विस्तार किया। दक्षिणी बर्मा में मो जाति के जो अनेक राज्य थे उन्हें उसने आक्रांत किया और परास्त कर अपने अधीन किया। श्री क्षेत्र भी उसके कोप से नहीं बच सका, यद्यपि रण क्षेत्र में अनिरुद्ध ने पयु और मो लोगों को परास्त कर दिया था, पर संस्कृति के क्षेत्र में वह उनसे पराभूत हो गया। उसने उनके धर्म, साहित्य, भाषा और लिपि को अपना लिया। यही कारण है कि पयु तथा मो लोगों की बर्मा में पृथक सत्ता का प्रायः लोप हो गया और वे उस मर्म बहन या बर्मी जाति के अंग बन गए जिसने कि उनकी संस्कृति को पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया था। अनिरुद्ध ने अराकान पर भी आक्रमण किया और वहां के पुराने भारतीय राज्यों को भी अपने अधीन किया। पूर्व दिशा में शान राज्य भी उस द्वारा जीत लिया गया। इस प्रकार यह मर्म राजा प्रायः संपूर्ण बर्मा पर अपना शासन स्थापित करने में समर्थ हुआ। अनिरुद्ध केवल विजेता ही नहीं था, अपने राज्य की समृद्धि के लिए भी उसने अनेक कार्य किए। भूमि की सिंचाई के लिए उसने अनेक नहरें निकलवाई और खेती की उन्नति के लिए अनेक अन्य उपाय किए। उसका विवाह वैशाली की राजकुमारी पंच कल्याणी के साथ हुआ था। संभवतः वह अराकान की वैशाली की राजकुमारी न होकर उत्तरी बिहार के वैशाली के राजकुल की कन्या थी। बौद्ध धर्म के संबंध में जो महत्वपूर्ण कार्य राजा अनिरुद्ध द्वारा किए गए संक्षेप से उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उत्तरी बर्मा में तंत्र प्रधान महायान संप्रदाय का प्रचार था जिसके पुरोहित आरी कहते थे। वे लंबे बाल तथा लंबी दाढ़ी रखा करते थे और काले कपड़े पहनकर तांत्रिक साधना किया करते थे। पगान के दक्षिण में थमहती गांव उनका प्रधान केंद्र था। आरी आचार्यों की संख्या 30 थी पर उनके शिष्य 60,000 के लगभग थे। जनता उन्हें मानती थी और उन्हीं की शिक्षा के अनुसार धर्म का पालन करती थी। शीन अरहन नाम की एक धर्मदंशी ब्राह्मण स्थवीर ने तंत्र प्रधान महायान के स्थान पर विशुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार का उत्तरी बर्मा में प्रयत्न किया। राजा अनिरुद्ध उनके ज्ञान से प्रभावित हो गया और उसने वज्रयान से संयुक्त महायान का परित्याग कर अस्थवीर हीनयान को स्वीकार कर लिया। पर उत्तरी बर्मा में बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। राजा के पूछने पर शीन अरहन ने बताया कि मो जाति के थातोन राज्य में बौद्ध त्रिपिटक के मूल ग्रंथ विद्यमान है और उन्हें वहां से प्राप्त किया जा सकता है। अनिरुद्ध ने अपने एक चतुर मंत्री को भेंट उपहार देकर थाटोन के राजा मनोहर के पास भेजा और उससे धर्म ग्रंथ भेजने के लिए अनुरोध किया। मनोहर ने इसका उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारे जैसे मिथ्या दृष्टि वाले व्यक्ति के पास त्रिपिटक नहीं भेजे जा सकते। सिंहराज, केसरी की वसा चर्बी स्वर्ण पात्र में ही रखी जा सकती है, मिट्टी के पात्र में नहीं। केसरी सिंह राजस्व वसा सुवर्ण पातियम तेव न मति भाजने। यह सुनकर अनिरुद्ध को बहुत क्रोध आया और उसने एक बड़ी सेना के साथ थाटोन पर आक्रमण कर दिया। राजा मनोहर को सौ परिवार पगान ले आया गया, साथ ही त्रिपिटक तथा अनेक योग्य बौद्ध विद्वान भी थाटोन से पगान ले आए गए। जिन हाथियों पर त्रिपिटक तथा अन्य धर्मग्रंथों को पगान लाया गया था उनकी संख्या 30 थी। शिन अरहन की विद्वता तथा वाग्मिता और राजा अनिरुद्ध के उत्साह के कारण सर्वास्तिवाद का उत्तरी बर्मा में भी प्रचार हो गया और हीनयान के इस संप्रदाय के केंद्र के रूप में पगान अरिमर्दनपुर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अनिरुद्ध बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक एवं संरक्षक था, इसीलिए दक्षिणी भारत के चोल राज्यों से त्रस्त हुए सिंघल देश के राजा विजय बाहु 1065 से 1120 ने उससे सहायता की याचना की। चोल राज से सिंघल की रक्षा करने के लिए अनिरुद्ध को अपनी सेना भेजने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि विजय बाहु ने उसे पहले ही परास्त कर दिया था। पर चोल आक्रमणों के कारण सिंघल में बौद्ध धर्म को जो क्षति पहुंची थी उसकी पूर्ति करने के लिए अनिरुद्ध ने बहुत से भिक्षु तथा धर्मग्रंथ वहां भेजे। बदले में उसने भगवान बुद्ध की दंत धातु के लिए इच्छा प्रकट की। सिंघल के राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और अनिरुद्ध ने इस दंत धातु पर स्वेज गौन का महास्तूप बनवाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में उसके पुत्र केन जित्था द्वारा पूरा किया गया। 1077 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध की मृत्यु हुई। उसके पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र सबलु शल्य अरिमर्दनपुर के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, पर वह अयोग्य तथा निर्बल था। मोलोग ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और वे आक्रमण करते हुए पगान तक पहुंच गए। राजा उन्हीं के हाथों मारा गया 1084 ईस्वी में। मू आक्रमण के समय अनिरुद्ध के छोटे पुत्र केन जित्था ने उत्तर की ओर भागकर अपनी जान बचाई थी। अवसर पाते ही उसने पगान पर आक्रमण कर दिया और मू सेना को परास्त कर वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर उसने श्री त्रिभुवनादित्य महाराज की उपाधि धारण की। बर्मा के इतिहास में केन जित्था का स्थान अत्यंत महत्व का है। उसने न केवल स्वे जीगोन के महास्तूप को पूरा कराया था अपितु कितने ही नए स्तूपों तथा चैत्यों का भी निर्माण कराया था। उस द्वारा निर्मित आनंद विहार बहुत प्रसिद्ध है। बर्मा में भारतीय वास्तुशिल्प का वह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। केन जित्था का भारत के साथ घनिष्ठ संबंध था। उसका विवाह वैशाली उत्तरी बिहार की राजकुमारी के साथ हुआ था। बहुत से बौद्ध और वैष्णव विद्वान उसके समय में भारत से बर्मा गए थे और केन जित्था ने उनका समुचित सम्मान किया था। कहते हैं कि 3 मास तक निरंतर उसने भारत के 8 भिक्षुओं को अपने हाथ से भोजन कराया था और उनसे भारत के विहारों तथा मंदिरों के विषय में सब जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसी जानकारी से उसने आनंद विहार का नक्शा तैयार कराया था और यह प्रयत्न किया था कि यह विहार पूर्णतया भारत के विहारों के सदृश हो। जब उसे ज्ञात हुआ कि बोधगया का मंदिर जीर्ण हो गया है तो उसने उसकी मरम्मत की भी व्यवस्था की। बर्मी ग्रंथों में लिखा है कि राजा केन जित्था ने नानाविध रत्नों को एकत्रित कर उन्हें गया के पवित्र विहार के पुनर्निर्माण के लिए भेजा था और उसे अब पहले से अच्छा बनवा दिया गया था। 1112 ईस्वी में केन जित्था की मृत्यु हुई। उसके उत्तराधिकारी राजा अलोंग सित्तु 1112 से 1167 ने अपने एक सामंत अराकान के राजा द्वारा बोधगया मंदिर की मरम्मत के काम को पूरा कराया। अलोंग सित्तु के बाद अरिमर्दनपुर पगान के राज्य का ह्रास प्रारंभ हो गया। विविध राजकुमारों में राज्य के लिए झगड़े शुरू हो गए और अंतःपुर के षड्यंत्रों के कारण शासन का सुचारू रूप से संचालन कर सकना संभव नहीं रहा। इन राजाओं का वृतांत लिखने से कोई लाभ नहीं है। 13वीं सदी में जब मंगोल सम्राट कुबले खां दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने में तत्पर हुआ, उसका ध्यान बर्मा की ओर भी गया। 1271 में कुबले खां ने अपने दूत पगान भेजे और उन्होंने वहां के राजा नरसिंहपति से मंगोल सम्राट की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, पर नरपति सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर चीन के दक्षिणी प्रांत यूनान के शासक ने बर्मा पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण नरपति को पगान छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। मंगोलों ने बर्मा पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया और वहां के राजा से अधीनता स्वीकृत करके ही वे संतुष्ट हो गए, पर नरसिंहपति के लिए अब शासन संभाल सकना कठिन हो गया। सर्वत्र उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगे और 1287 ईस्वी में विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी। इस पर कुबले खां की एक सेना ने फिर बर्मा पर आक्रमण किया और पगान पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार अरिमर्दनपुर में उसके समृद्ध राज का अंत हुआ, जिसकी स्थापना 2 सदी पूर्व हुई थी। मंगोलों ने बर्मा पर स्थायी रूप से शासन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, पर उसके आक्रमण का यह परिणाम हुआ कि बर्मा में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं रह गया। वहां अनेक छोटे बड़े राज्य स्थापित हो गए जो निरंतर आपस की लड़ाइयों में व्यापृत रहा करते थे। बर्मा के इतिहास में अगले 1.5 सदी का काल अंधकार का युग है। बौद्ध धर्म वहां इस काल में कायम रहा और धर्म के माध्यम से भारत के साथ भी उसका संबंध बना रहा। भारतीय संस्कृति की जो परंपरा वहां विद्यमान थी वह नष्ट नहीं हुई, यद्यपि उसमें कुछ शिथिलता अवश्य आने लग गई। बर्मी बौद्धों का सिंघल श्रीलंका के बौद्धों के साथ संबंध बढ़ता गया। इस समय भारत से बौद्ध धर्म का प्रायः लोप हो चुका था, अतः यदि भारत और बर्मा के सांस्कृतिक संबंध में शिथिलता आने लगे तो उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।